भौतिक सामग्री का साक्ष्य। पुरानी घटनाओं से कार्य कारण रूप में संबंधित भौतिक सामग्री के अवशेष ऐतिहासिक जानकारी के तीसरे मुख्य साधन हैं। समान इतिहास की रचना के लिए इनका सर्वाधिक महत्व प्राचीन कालिक इतिहास के पुनर्निर्माण में है। इतिहास की दृष्टि से पुराने भौतिक अवशेषों की खोज, उनकी परीक्षा, उनका संबंध स्थापन और संरक्षण आदि पुरातत्व विद्या के विषय हैं। मनुष्य के प्राचीनतम इतिहास को जानने के लिए सामग्री ही एकमात्र साधन है। जिस युग से अभिलेख मिलने लगते हैं, उस युग के लिए भी पुरातात्विक सामग्री समाज के भौतिक जीवन को समझने के लिए विशेष रूप से उपयोगी बनी रहती है। चाहे साक्षी लेख हों, कागजात हों या भौतिक सामग्री हों, सभी का उपयोग परीक्षा पूर्वक होना आवश्यक है। इस परीक्षा में कुछ सामान्य प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। प्रस्तुत लेखादि की रचना कब हुई, किसने की, किस उद्देश्य से, लेखक का चरित्र विश्वसनीय है अथवा नहीं, उसके जानकारी के अवसर पर्याप्त थे या नहीं, लेख मुद्रा आदि असली हैं कि जाली, इनमें पहले तिथि संबंधी प्रश्न के निर्णय के लिए कभी कभी बहुत छानबीन की आवश्यकता होती है। लिपि, भाषा, शैली आदि की परीक्षा के लिए पृथक पृथक शास्त्रों का विकास हुआ है। पुरातात्विक सामग्री के तिथि निर्णय में स्तरीकरण, रासायनिक परीक्षा, कार्बन 14 की परीक्षा, प्रस्तरीभूत अवशेषों की परीक्षा, प्राग विश्लेषण, निवेश मापन, अवशेषों के मिलने का सांख्यिकीय विश्लेषण आदि का प्रयोग होता है। पांडुलिपियों की परीक्षा पाठ विवेचन के सिद्धांतों से की जाती है। एक ही ग्रंथ की विभिन्न पांडुलिपियों के आदर्श और प्रतिलिपि के संबंध के अनुसार एक वंशावली बनाई जाती है, जिसमें एक ही मूल से किस प्रकार विभिन्न पांडुलिपियों के भेदों का जन्म हुआ, इसका इतिहास पता लगाने की चेष्टा होती है। इस प्रक्रिया से प्रमाणिकतम पाठ अथवा पांडुलिपि की पहचान की जाती है। जैसा कि अब तक स्पष्ट हो गया है, इतिहास की जानकारी के साधन अक्सर अपर्याप्त रूप से ज्ञापक होते हैं। उनके साधन में एक संभावना का अंश लगा होता है और यदि इस प्रकार की संभाव्य सूचनाओं को ही निरंतर जोड़ते चला जाए तो समूचा विवरण संदिग्ध रूप हो उठेगा। इसका प्रतिदृष्टांत प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति में मिलता है। वहाँ किसी एक प्रत्यक्ष तथ्य को लेकर दीर्घ तर्क श्रृंखलाएं प्रवृत्त होकर नितांत सूक्ष्म तत्व का उद्घाटन करती हैं। इस प्रक्रिया में संदेह या बाधा की तब तक संभावना नहीं रहती जब तक कि प्रत्यक्षांतर की उपलब्धि फिर से नवीन विचार न प्रेरित करें। विज्ञान के प्रमाणों का निष्कंप प्रमाण्य और वैज्ञानिक प्रमाण की संदेह के लेश मात्र से भी शून्यता, अभ्यास दशापन प्रत्यक्ष और तर्क से समर्थित यथार्थ अनुमान पर आधारित होता है। इसके विपरीत इतिहासकार के लिए प्रत्यक्ष उपलब्ध ही नहीं होता, क्योंकि उसका विषय अतीत कालिक है। उसका तर्क सामान्य जीवन की संभावनाओं पर आधारित होता है और उसमें संदेह का अवसर सदा बना रहता है। उसकी भाषा सामान्य भाषा है। उसके निर्णय अतीत विषयक होने से उनका कभी भी न प्रत्यक्ष द्वारा सत्यापन हो सकता है न खंडन। इस स्थिति में इतिहासकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपने प्रमाणों की एक दूसरे से संपुष्ट करें। परमाणु का यह परस्पर संपोषण ऐतिहासिक प्रतिपादन की विशेषता है। इसके साथ ही इतिहासकार के लिए एक विशेष प्रकार की निर्णय बुद्धि अपेक्षित है। यह निर्णय बुद्धि समान या वैज्ञानिक तार्किक बुद्धि नहीं है। इसकी तुलना उस अंतर्दृष्टि से की जा सकती है जो कि किसी विषय के पारखी में सुदीर्घ अभ्यास से सहज रूप से प्रतिष्ठित होती है अथवा जिसे अनुभवी व्यक्ति की बारीक पहचान कहते हैं। कचहरी में अनुभवी न्यायाधीश गवाहों की विश्वसनीयता के संबंध में अनुभवी पुलिस का अधिकारी अपराधियों के संबंध में इसी प्रकार की सहज निर्णय बुद्धि प्राप्त कर लेता है। कठोर प्रमाण व्यापार की दृष्टि से मामले के संदिग्ध रहने पर भी हम व्यवहार में प्रायः इस तरह के कुशल परीक्षकों की बात को महत्व देते हैं। इतिहास को इस अर्थ में एक प्रकार के सुदीर्घ अनुभव और चिराभ्यास से पुष्ट विवेक के निर्णय की बात कहा जा सकता है, न कि निरातार्किक युक्ति विन्यास। ऐतिहासिक ज्ञान की प्रक्रिया अवश्य ही प्रमाणिक उपादान की प्रक्रिया है, वह कल्पना न होकर निश्चय ही प्रमाणानुसंधान है, किंतु उसका सार अनुभव मूलक संभावना और अंतर्दृष्टिवत परखा या विवेक बुद्धि के द्वारा निर्णयन है। ऐतिहासिक ज्ञान न विशेष विषयक प्रत्यक्ष है, न समान विषयक अनुमान, वह विशेष विषयक निर्णय है। उसका विषय अतीतकालिक और तिथ्यांकित घटना होती है। इस प्रकार के विषय का ऐतिहासिक बोध स्मृति से भिन्न और परोक्ष होता है। परोक्ष होते हुए भी वह समान विषयक नहीं होता, विशेष विषयक होते हुए भी वह आलोचनात्मक होता है। ऐतिहासिक ज्ञान तथ्यात्मक एवं सत्यात्मक। ऐतिहासिक ज्ञान में दो स्तर होते हैं, तथ्यात्मक और सत्यात्मक। तथ्य से यहाँ तात्पर्य किसी भी वास्तविक घटना के अभिधायक वाक्य के अर्थ से है। सत्य से यहाँ तात्पर्य मूल संहिता अर्थ अथवा मानवीय सतर्कता से है। तथ्य का निर्णय प्रमाण मूलक उपपादन से होता है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। इन पृथक पृथक तथ्यों का बृहत्तर मानवीय सत्य के संदर्भ में समन्वित निरूपण इस अर्थ में निर्णयात्मक होता है, जिसका कि सामान्य स्वरूप अभी ऊपर कहा जा चुका है। प्रचलित भाषा में ऐतिहासिक ज्ञान की पहली पीढ़ी परमाणु के आधार पर तथ्य का निर्धारण होती है, दूसरी अनुभव के आधार पर तथ्यों की व्याख्या होती है। इनमें पहली सीढ़ी पर अधिकांश इतिहासकारों में एक मत संभव होता है, और सेनियोबो जैसे इतिहासकार इसी स्तर के ज्ञान को ठीक ठीक वैज्ञानिक इतिहास कहते हैं, किंतु वास्तव में घटनाओं और उनके संदर्भ को सर्वथा अलग नहीं रखा जा सकता, और न मानवीय तथ्यों का मूल्य निरपेक्ष निरूपण संतोषप्रद हो सकता है। डिल्थाई के अनुसार घटनाओं के संदर्भ में रखना ही उनका व्याख्या है। लॉर्ड एक्टन का मत था कि इतिहासकार को मानवीय कर्मों के सदसत्य का निर्णय भी करना चाहिए। हिग्गल और कालिंगवुड के अनुसार मानवीय कर्मों के मूल में विचार ही होते हैं। फलतः ऐतिहासिक ज्ञान के तथ्यों के अनुसंधान और व्याख्या को एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष मानना चाहिए, जिसमें एक कल्पित सीमा शुद्ध वस्तु है और दूसरी कल्पित सीमा शुद्ध मूल्य। तथ्य और व्याख्या की सापेक्षता सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में अति स्पष्ट हो जाती है। बाह्य प्रत्यक्ष के योग घटनाओं के कारण और संदर्भ ढूंढने के प्रसंग में हम व्यक्ति स्वभाव, सामुदायिक व्यवस्था और सामान्यतया स्वीकृत विचारों तक पहुँचते हैं। व्यक्ति स्वभाव को आंकना एक साथ ही तथ्य निर्णय भी है और तथ्यों की व्याख्या भी। संस्थाओं और व्यवस्थाओं का विश्लेषण उन आदर्शों, निष्ठाओं एवं निहित स्वार्थों के स्पष्टीकरण के बिना नहीं हो सकता, जिनमें तथ्य और मूल्य के बीच की विभाजन रेखा इतिहासकार की दृष्टि के अनुसार बदलती रहती है। सांस्कृतिक रूप मूल्य उपलब्धि को ही व्यक्त करते हैं, बिना उसके अंदर बैठे उनका यथार्थ बोध और निरूपण संभव नहीं है। प्रत्येक मानवीय कर्म में और संरक्षित अनुभूति में किसी न किसी प्रकार का और स्तर का मूल्य बोध अथवा विवेक अंतर निगूढ़ रहता है। उस कर्म अथवा अनुभूति को समझने के लिए इस अंतर निगूढ़ मूल्यबोध या विवेक का साक्षात्कार आवश्यक है। यह साक्षात्कार या काल्पनिक अनुप्रवेश एक तात्कालिक कल्पित तादत्म की भावना के द्वारा ही संभव है। इस व्यापार को समानुभूतिक कल्पना अथवा तन्मय कल्पना कहा गया है। इतिहासकार को विचार बुद्धि के मार्ग में इस प्रकार की तन्मयता वैसे ही कोई बाधा उपस्थित नहीं करती है, जैसे कला की आलोचक की परीक्षा बुद्धि के मार्ग में उसकी तन्मयता। अतीत के क्षीण सूत्रों को फिर से संजोने के लिए धैर्य पूर्वक परमाणु की खोज के अतिरिक्त जिस कल्पना और सहानुभूति की आवश्यकता होती है, उसमें इतिहासकार के अपने संस्कार और ज्ञान का विशेष हाथ होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक अतीत की ऐतिहासिक प्रस्तुति में साक्ष्य और तथ्य को सदा ही पृथक नहीं रखा जा सकता। कालिदास की रचनाएं कालिदास के विषय में साक्षी भी हैं और मुख्य व्याख्याएं तथ्य भी। शंकराचार्य के भाष्यों की व्याख्या किए बिना उनका अर्थ ही स्पष्ट नहीं हो सकता। अर्वाचीन काल से पहले के लिए सामाजिक इतिहास की सामग्री इतनी अपूर्ण अवस्था में मिलती है कि उसके आधार पर संरचना व्यापक समान कल्पनाओं के प्रति उस प्रकार जागरूक नहीं होते हैं जैसा कि उन्हें होना चाहिए। अर्वाचीन और वर्तमानकालिक समाज का निरूपण पर्याप्त तथ्यों के बावजूद साथ ही एक संदेह की धूमिलता से मुक्त नहीं होता। समाज की रचना इतने सारे और इतने अप्रत्यक्ष संबंधों और तथ्यों के द्वारा घटित होती है कि उसे तथ्यों के टुकड़े टुकड़े जोड़कर उसकी समग्रता में प्रस्तुत करना संभव नहीं है। बिना अंतर्दृष्टि और कल्पना के सहारे मानवीय तथ्यों का मूल्य निरपेक्ष निरूपण संतोषप्रद हो सकता है। दिलथाई के अनुसार घटनाओं के संदर्भ में रखना ही उनकी व्याख्या है। लॉर्ड एक्टन का मत था कि इतिहासकार को मानवीय कर्मों के सदसत का निर्णय भी करना चाहिए। हीगल और कालिंगवुड के अनुसार मानवीय कर्मों के मूल में विचार होते हैं, फलतः ऐतिहासिक ज्ञान के तथ्यों के अनुसंधान और व्याख्या को एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष मानना चाहिए, जिसमें एक कल्पित सीमा शुद्ध वस्तु है और दूसरी कल्पित सीमा शुद्ध मूल। तथ्य और व्याख्या की सापेक्षता सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में अति स्पष्ट हो जाती है। बाह्य प्रत्यक्ष के योग घटनाओं के कारण और संदर्भ ढूंढने के प्रसंग में हम व्यक्ति स्वभाव सामुदायिक व्यवस्था और सामान्यतया स्वीकृत विचारों तक पहुँचते हैं। व्यक्ति स्वभाव को आंकना एक साथ ही तथ्य निर्णय भी है और तथ्यों की व्याख्या भी संस्थाओं और व्यवस्थाओं का विश्लेषण उन आदर्शों निष्ठाओं एवं निहित स्वार्थों के स्पष्टीकरण के बिना नहीं हो सकता जिनमें तथ्य और मूल के बीच की विभाजन रेखा इतिहास की दृष्टि के अनुसार बदलती रहती है। सांस्कृतिक रूप मूल्य उपलब्धि को ही व्यक्त करते हैं, बिना उसके अंदर बैठे उनका यथार्थ बोध और निरूपण संभव नहीं है। प्रत्येक मानवीय कर्म में और संरक्षित अनुभूति में किसी न किसी प्रकार का और स्तर का मूल्य बोध अथवा विवेक अंतर निगूढ़ रहता है। उस कर्म अथवा अनुभूति को समझने के लिए इस अंतर निगूढ़ मूल बोध या विवेक का साक्षात्कार आवश्यक है। यह साक्षात्कार या काल्पनिक अनुप्रवेश एक तात्कालिक कल्पित तादत्म्य की भावना के द्वारा ही संभव है। इस व्यापार को समानुभूति कल्पना अथवा तन्मय कल्पना कहा गया है। इतिहासकार को विचार बुद्धि के मार्ग में इस प्रकार की तन्मयता वैसे ही कोई बाधा उपस्थित नहीं करती है जैसे कला के आलोचक की परीक्षा बुद्धि के मार्ग में उसकी तन्मयता। अतीत के छिन्न सूत्रों को फिर से संजोने के लिए धैर्यपूर्वक परमाणु की खोज के अतिरिक्त जिस कल्पना और सहानुभूति की आवश्यकता होती है उसमें इतिहासकार के अपने संस्कार और ज्ञान का विशेष हाथ होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक अतीत की ऐतिहासिक प्रस्तुति में साक्ष्य और तथ्य को सदा ही पृथक नहीं रखा जा सकता। कालिदास की रचनाएँ कालिदास के विषय में साक्षी भी हैं और मुख्य व्याख्या तथ्य भी। शंकराचार्य के भाष्यों की व्याख्या किए बिना उनका अर्थ ही स्पष्ट नहीं हो सकता। अर्वाचीन काल से पहले के लिए सामाजिक इतिहास की सामग्री इतनी अपूर्ण अवस्था में मिलती है कि उसके आधार पर संरचना व्यापक समान कल्पनाओं के बिना संभव नहीं होती। यद्यपि सामाजिक इतिहासकार बहुधा अपनी स्वीकृत कल्पनाओं के प्रति उस प्रकार जागरूक नहीं होते हैं जैसा कि उन्हें होना चाहिए। अर्वाचीन और वर्तमानकालिक समाज का निरूपण भी पर्याप्त तथ्यों के बावजूद एक संदेह की धूमिलता से मुक्त नहीं होता। समाज की इतना समाज की रचना इतने सारे और इतने अप्रत्यक्ष संबंधों और तथ्यों के द्वारा घटित होती है कि उसे तथ्यों के टुकड़े टुकड़े जोड़कर उसकी समग्रता में प्रस्तुत करना संभव नहीं है। बिना अंतर्दृष्टि और कल्पना के सहारे सामाजिक और सांस्कृतिक साक्ष्यों और तथ्यों को एक जीवंत समग्रता के रूप में नहीं देखा जा सकता है। टूटे ठीकरे, मिट्टी के खिलौने, कुछ अभिलिखित मुद्राएं, कुछ मकानों के भग्नावशेष, इस प्रकार की सामग्री से किसी युग की विशेषता की परिभाषित करने का प्रयत्न इतिहासकार को उनकी रचना, उपयोग और संकेत को समझने की ओर प्रवृत्त करता है। जहां सामग्री अत्यंत प्रचुर होती है, वहां अनंत विस्तार के अंतराल से सार्थक संबंधों को खोजने के लिए भी साक्ष्यों और तथ्यों को के अपेक्षित महत्व का आकलन आवश्यक होता है। इतिहासकार न केवल तथ्यों के दृष्टि से साक्ष्यों का महत्व आंकता है, बल्कि बृहत्तर तथ्यों की दृष्टि से अनु तथ्यों का महत्व आंकता है। उसे साक्ष्यों के घटकों के वास्तविक और सार्थक संबंधों को पता लगाकर महत्वपूर्ण तथ्यों का निरूपण करना होता है। तथ्यों में महत्व का निर्णय इतिहास के लिए उतना ही आवश्यक है जितना साक्ष्यों में प्रामाणिकता का। सभी तथ्य और घटनाएं बराबर महत्वपूर्ण नहीं होती। ऐतिहासिक संरचना में कोई केंद्र में होती है, कोई पार्श्व में, कोई परिधि में। घटनाओं की इस न्यूनाधिक अपेक्षिकता को समझे बिना इतिहास का निरूपण आकार और सार्थकता से विहीन निरी सामग्री अथवा उपादान मात्र का सूची पत्र बन जाएगा। वह इतिहास न होकर विभिन्न ऐतिहासिक संरचनाओं की संभावना या आकार मात्र होगा। घटनाओं का महत्व किस प्रकार आंका जा सकता है? महत्व नापने का एक पैमाना घटना की प्रभावशीलता या कारकता होती है, किंतु यदि घटना का केवल साक्षात्कार या प्रभाव देखा जाए तो एक भूचाल ईसा मसीह की मृत्यु से अधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बन जाएगा। इसलिए प्रभाव को आंकने के लिए यह देखना आवश्यक है कि वह प्रभाव श्रृंखलाकार प्रतिक्रिया के समान स्वतः अपना विस्तार करने वाला जीवंत प्रभाव है अथवा केवल एक तात्कालिक विस्फोट। यह भी देखना आवश्यक है कि वह घटना इस प्रकार के बृहत्तर प्रभाव की स्वयं मूल जननी है अथवा किसी और ही सूक्ष्मतर घटना प्रभाव अथवा प्रभाव श्रृंखला का एक निमित्त मात्र है। उदाहरण के लिए तिमूर की सामरिक सफलताएं सिकंदर की सफलताओं से तुलनीय है, किंतु सिकंदर का वृत्तांत एक अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव श्रृंखला का अंग था। नेताओं का महत्व उनके अपने तात्कालिक प्रभाव से नहीं बल्कि उनके संदर्भों से अलग अलग हो जाता है। सेनियोबो का कहना है कि यह मानना एक प्रायिक भ्रांति की महत्वपूर्ण और बड़ी घटनाओं के कारण भी महत्वपूर्ण और बड़े होते हैं। उनका कहना है कि 19वीं शताब्दी का यूरोप का इतिहास तीन संयोगों से घटित हुआ है। यदि विशुद्ध कार्य कारण भाव को ही ऐतिहासिक महत्व का मानदंड माना जाए तब तो इस मत को असिद्ध करना दुष्कर है, क्योंकि जीवन में छोटी बातों से बड़ी बातें पैदा होती दिखती हैं। किंतु जिस घटना का मूल्य मानव विवेक के द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ है, क्या उसे बड़ा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है? प्राकृतिक दुर्घटना बहुत क्षति पहुँचा सकती है और मनुष्य के लिए एक बाहरी चुनौती बन सकती है, किंतु इतने से ही वह महत्वपूर्ण नहीं होती। वह महत्वपूर्ण तब होती है जबकि वह मानव चिंतन की दिशा को ही एक निराशाग्रस्त भाग्यवाद की ओर मोड़ दे। स्पष्ट ही इतिहासकार को घटनाओं के मूल्य निर्धारण में घटनाओं को उनके अपने चारित्र और प्रभाव के संदर्भ में देखना है और उस बृहत्तर घटनावली के संदर्भ में देखना है जिसका वह अंग है और तद विषयक मानवीय चिंतन के संदर्भ में देखता है। घटनाओं के प्रति मानवीय चिंतन का संदर्भ अपनी तात्कालिक स्थिति में तो ऐतिहासिक साक्ष्यों से निर्धारणीय होता है, किंतु यह तात्कालिक मानवीय चिंतन सामान्य जनता और ऐतिहासिक व्यक्तियों के विचार, अभिप्राय आदि स्वयं एक सूक्ष्म किंतु केंद्रीय कारण शक्ति से युक्त घटना प्रवाह होता है, जिसका मूल्यांकन करने वाली मानव दृष्टि प्रति युग में अथवा विभिन्न स्थितियों में बदलती जाती है। यही कारण है कि इतिहासकार के दृष्टि के अनुसार उसके द्वारा की गई अतीत की व्याख्या एक विशिष्ट रूप ग्रहण करती है। इतिहासकार की दृष्टि उसके अपने युग और उसकी अपनी स्थिति से प्रभावित होती है और इस प्रकार इतिहास लेखन स्वयं इतिहास का अंग बनता है। यदि इतिहास की प्रत्यक्ष योग बाहरी घटनाओं को समझने के लिए हम स्वभावतः दृश्योपयोगी देश काल द्रव्य कारणता आदि प्रकृति निरूपक मूल्य कल्पनाओं का अनुसरण करते हैं तो यह अनुसरण हमें मनुष्य के संस्कारों प्रवृत्तियों और अभिप्रायों तक ले जाता है, किंतु ये मनोवृत्तियाँ मनुष्य को किसी न किसी सत्य ज्ञान या मूल ज्ञान का दावा करके ही प्रभावित करती है। इस प्रकार अंतोतगत्वा मानवीय कर्मों के कारण उसके विवेक के विशिष्ट निर्णयों में जाकर प्रयवसित होते हैं। यह मानवीय विवेक कोई एक स्थित शाश्वत बात न होकर एक अनुभव सापेक्ष विकासशील ज्ञान है। यह मानवीय ज्ञान का इतिहास या मानवीय मूल्य साधना के मर्म का इतिहास स्पष्ट ही प्रकृत्युत्तरीन सांस्कृतिक कल्पनाओं की सहायता से ही निरूपित हो सकता है। यदि सभी सांस्कृतिक कल्पनाओं की सहायता से ही निरूपित हो सकता है, यदि सभी सांस्कृतिक क्षेत्रों में कोई एक व्यापक ऐतिहासिक पूर्व कल्पना है तो वह द्वंद्वात्मकता की है। जैसे जैसे ऐतिहासिक ज्ञान बढ़ता है, अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक रूपों के निर्णय मानो एक दूसरे की आलोचना को मूर्त रूप में प्रस्तुत करते हुए एक प्रशस्तर सत्य की ओर संकेत करते हैं। समस्त मानवीय राग द्वेष और निहित स्वार्थ भावना के पीछे एक अधूरे आम विवेक की प्रेरणा रहती है, मानो अपने अधूरेपन को व्यवहित होने पर विपरीत फल के द्वारा प्रदर्शित कर पूर्णतः विवेक का संधान प्रस्तुत करती है। मानवीय बोध की यह एक आवश्यक शर्त है कि उसका विषय सीमित हो। इसके परिणाम स्वरूप सभी प्रकार के ज्ञान और अनुभव सप्रतियोगिक होते हैं। किसी भी समाज व्यवस्था या सामंजस्य सांस्कृतिक इकाई के लिए यह आवश्यक है कि वह अनंत संभावनाओं में से कुछ को चुनकर अपना आधार बनाए। जैसे संगीत में संवादी स्वरों की श्रेणी में से कुछ चुने हुए स्वर ही किसी विशेष संगीत पद्धति में उपयोग होते हैं। उन स्वरों में से भी कुछ की विशिष्ट योजनाएं ही रागों को परिभाषित करती हैं। ऐसे ही मानवीय ज्ञान और अनुभव की कुछ स्थापनाओं को बुनियाद बनाकर विशिष्ट समाज एवं संस्कृतियों की रचना होती है। इसीलिए इतिहास के क्रम में आधारभूत मान्यताएं और उन पर आधारित संस्थाएं ऐतिहासिक अनुभव के प्रवाह में अपनी सीमाएं व्यक्त कर मनुष्य को अन्य संभावनाओं की ओर मुड़ने के लिए बाध्य करती हैं। जैसे विचार में कोई एक मत क्रमशः अपने परिष्कार और रूपांतरण को जन्म देता है, ऐसे ही संस्थाएं भी जैसे विशुद्ध प्रत्यात्मक ज्ञान के अंदर आलोचना की प्रक्रिया प्रसंगा पादन करती हैं, ऐसे ही वस्तु विज्ञान के क्षेत्र में पूर्व सिद्ध ज्ञान की सीमाओं को समझने और दूर करने से ही प्रगति होती है। संस्थाओं के चलन और उनके व्यतिरिक्त व्यवहार के निरंतर संघर्ष से संस्थाओं का परिवर्तन होता है। संक्षेप में ज्ञान और अनुभव संस्कृति और प्रकृति एवं मानवीय स्पर्धाओं के संघर्ष से इतिहास की प्रक्रिया एक द्वंद्वात्मकता की प्राप्ति करती है। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इतिहास की व्याख्या करने में हम अपना तादात्म्य उसके किसी एक सीमित रूप से न स्थापित करें। सभी आग्रह और आक्रोश, जय और पराजय, पक्ष और विपक्ष एक ऐसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का निर्माण करते हैं जिसकी समुचित गति सदा ही अतर्क रहती है। यह समझ लेने पर इतिहासकार के लिए आग्रह और आक्रोश निरर्थक हो जाते हैं। यह नित्य विश्व का दृष्टा न सही, उसे अनित्य विश्व का दृष्टा बनना ही है। दृष्ट का भाव तटस्थ होता है। यह तटस्थता मूल्य निरपेक्षता नहीं है, बल्कि स्वयं एक सर्वोत्कृष्ट मूल्य है। कहा गया है कि सब कुछ देखना, सब कुछ क्षमा कर देना है। इसीलिए विद्यारायण ने जहाँ काव्य और तर्क के अभ्यास के चित्त विक्षेप का कारण बताकर अनुपादेक कहा है, इतिहास के परिशील को अनित्यादर्शन के द्वारा निर्वेदजनक होने के कारण सराहा है। इस दृष्टि का यह अर्थ नहीं है कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को कर्म जगत से अलग और न्याय अन्याय मूल अमूल्य के प्रति व्यवहार में उदासीन बना दे, किंतु इसका यह अर्थ अवश्य है कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पक्षपात, सीमित आग्रह एवं तात्कालिकता के अंधपन से मुक्ति दे। हेगल ने कहा था कि ट्रेजिडी का सार इस बात में है कि उसमें दोनों ही प्रतिपक्षी एकांगी न्याय मांगते हैं। यही इतिहासकार को सीखना है कि ऐतिहासिक संघर्ष उतना न्याय और अन्याय का नहीं होता जितना एक न्याय को मांग दूसरे न्याय की मांग का है। परिस्थिति विशेष में जो व्यवस्था और कानून उपयोगी और न्याययुक्त ठहरते हैं वे ही कालांतर में एक नई व्यवस्था और कानून की मांग के सामने दोषी प्रतीत होते हैं। व्यवस्थाओं को दोषी ठहराने के लिए कोई एक सर्वविदित कानून उपलब्ध नहीं होता है। इसीलिए उनमें संघर्ष वैसे ही अनिवार्य होता है जैसे प्रभुत्वशाली राज्यों में युद्ध। युद्ध व्यक्तियों के कलह के समान नहीं होता। न क्रांति एक स्थिर व्यवस्था के अंदर कानून के विरोध में विद्रोह के समान होती है। इतिहास के अध्ययन में युद्ध और क्रांति के घटक, प्रतिपक्षी समुदाय और व्यवस्थाएं अपने हितों और न्याय की मांगों के द्वंद्वात्मक अधूरेपन से ग्रस्त दिखती हैं। इस स्थिति में सब पक्ष समान रूप से ठीक नहीं प्रतीत होते, किंतु कोई भी पक्ष निर्दोष रूप से ठीक नहीं प्रतीत होता और इसीलिए युद्ध और क्रांति कभी अनिवार्य प्रतीत होने पर भी अंतिम नहीं प्रतीत हो सकते। न इतिहासकार यह कह सकता है कि किसी युद्ध और क्रांति का ऐसा पारमार्थिक महत्व है कि उसके लिए शेष सब मूल्यों का बलिदान होना चाहिए। वह यही कह सकता है कि यदि कोई समाज किसी एक लक्ष्य के लिए बहुत कुछ त्याग करने के लिए तत्पर है होता है तो संभवतः भविष्य में वह फिर प्रकारांतर से उन मूल्यों के फिर से संग्रह के लिए प्रवृत्त हो सकता है। समाप्त।